Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayan, 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 Narayan. वेदांत के एक मौलिक प्रश्न है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है कि क्रिया रूप है। ईश्वर के बारे में जितनी धारणा है वो सब क्रिया रूपता को लेकर के संपन्न होती है। अगर ईश्वर कुछ कर ना सके तो ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जितने भी संप्रदाय और धर्म हैं सब में सर्वकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया जाता है। और वेदांत में जो परम सत्ता है जिसको ब्रह्म बोलते हैं उसको निष्क्रिय ज्ञान स्वरूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो क्या ब्रह्म ईश्वर नहीं है या ईश्वर ब्रह्म नहीं है? ऐसा विभाग क्यों किया? बोले ये विभाग समझने के लिए किया है। एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, एक क्रिया का पहलू है और एक ज्ञान का पहलू है। क्रिया का ज्ञान होता है, क्रिया का ज्ञान होता है, ज्ञान की क्रिया नहीं होती है। तो क्रिया पराधीन है ज्ञान के और ज्ञान क्रिया से स्वतंत्र है। इसलिए जो सुप्रीम परम सत्ता है उसको ज्ञान स्वरूप ही माना जाता है, स्वाधीन सत्ता। और जहां ईश्वर की बात आती है वहां उसके साथ फिर माया भी जोड़नी पड़ती है, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्म तो एक ही वस्तु है। तो ज्ञान में क्रिया आई कहां से? तो बोले उपाधि के कारण क्रिया मालूम पड़ने लगती है। जैसे चुंबक रखा हो तो वो निष्क्रिय है कि सक्रिय है? निष्क्रिय है, लेकिन उसके पास आप लोहे का कण डाल दो तो वो लोहे का कण खींचने लगता है, तो क्रिया मालूम पड़ने लगती है। अब क्रिया हो तो रही है वो लोहे के क्षण में, कण में, लेकिन मालूम पड़ती है कि जैसे चुंबक क्रिया कर रहा है। तो चुंबक क्रिया करता नहीं है, उसकी उपस्थिति से लोहे में गति मालूम पड़ने लगती है। लोहा भी गतिशील नहीं है, गति की सिर्फ प्रतीति लोहे में होने लगती है। मान लो चुंबक उठा लो और लोहा रखा रहने दो तो गति नहीं मालूम पड़ेगी, और चुंबक रख दो तो गति मालूम पड़ने लगती है। मतलब एक ही वस्तु को समझने के लिए ये बात समझनी पड़ती है कि उसका औपाधिक रूप क्या है, माने किसके पास में रह करके इसमें कौन सा गुण प्रतीत होने लगता है, इसको बोलते हैं औपाधिक गुण। और जिस उपाधि के न रहने पर फिर वो कैसा मालूम पड़ता है? वो उसका स्वस्वरूप है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये बात बताई कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो सत्स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है और अनंत रूप है। तो सत भी अनंत है और ज्ञान भी अनंत है। इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले पंचभूतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई माया के द्वार से, उसमें ये क्रिया मालूम पड़ती है। अनंतता की सिद्धि के लिए ब्रह्म को जगत का कारण बताया जाता है। अच्छा, अब ज्ञान की सिद्धि कैसे हो? अनंत सत्य की सिद्धि तो ये इससे हो गई, तस्मात वाये तस्मात आत्मने आकाश असंभूत। अब अनंत ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, इसकी सिद्धि कैसे हो? तो इसकी सिद्धि के लिए ये पंचकोश विवेक इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो नारायण जैसे जो चीज सबसे पहले मालूम पड़ती है उसको ही आप स्वीकार कर लो, तो पहले आत्मा मालूम पड़ता है जनरली, तत्वज्ञ की दृष्टि से नहीं। तत्वज्ञ की दृष्टि तो उलट जाती है, लेकिन सामान्य दृष्टि में पहले शरीर मालूम पड़ता है या पहले आत्मा मालूम पड़ता है? पहले शरीर मालूम पड़ता है ना, तो विचार वहीं से प्रारंभ करते हैं जो चीज पहले मालूम पड़ती है। तो पंचभूतों का विकार ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश की उपस्थापना की गई। ये कोश है अर्थात आत्मा का आवरक है, ढक्कन है। अब बोले इसके और भीतर चलो, फिर क्या मालूम पड़ता है कि इसमें क्रिया मालूम पड़ती है? तो बोले इसी को प्राणमय कोश बोलते हैं। ये भी आत्मा का एक ढक्कन है जिसमें गति नहीं है। यदि उसमें गति मालूम पड़ने लगे तो इसका अर्थ है कि कोई न कोई चीज ऐसी बीच में आ रही है जो उसके स्वरूप को ढक रही है। तो ये क्रिया जो है इसको प्राणमय कोश बोलते हैं। प्राण माने क्रिया। तो क्रिया का विकार ये शरीर में जितनी चेतना, हलचल और विकृति। आखिर आदमी बुढ़ा क्यों हो जाता है? कोई चाहता थोड़ा ही है। तो बोले वो तो चीज रखी है, रखी रखी सड़ जाती है, बुढ़ापा और क्या है। तो वो तो रखी रहेगी तब भी सड़ेगी, काल जो है उसको सड़ा देता है, काल उसमें विकृति उत्पन्न कर देता है। तो ये जो विकार को प्राप्त होना है इसी को मयता बोलते हैं। तो ये क्रिया सृष्टि में हो रही है, एक शरीर में नहीं हो रही है, सारी सृष्टि में हो रही है। तो इस शरीर में भी हो रही है, सारा संसार बदल रहा है तो ये शरीर भी बदल रहा है। इसलिए ये प्राणमय है, क्रिया का विकार है प्राणमय, ये भी एक आवरण है। तो प्राणमय कोश अब उपस्थापना जब की जाती है तो कायदे से करनी पड़ती है। तो बोले प्राणमय कोश में पंच प्राण है और कर्मेंद्रियां हैं, ऐसा व्यवस्था बना दी। अब और इसके भीतर चलते हैं। तो कल थोड़ा सा हिस्सा इसका रह गया था प्राणमय का। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानाम आयुः। ये जो इंद्रियों के देवता हैं ये सब प्राणों का ही अनुवर्तन करते हैं, उसके पीछे पीछे ही चलते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है कि देवताओं में लड़ाई हो गई, कौन बड़ा। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो एक तरीका आपको बता ही देते हैं जानने का, अब आप ही निश्चय कर लेना कि कौन बड़ा है। तो आंख से कहा कि पहले तुम निकलो, मैंने सूर्य देवता से कहा कि तुम निकलो। तो सूर्य देवता आंख में से निकल गए तो अंधा हो गया। तो बोले कोई बात नहीं है, बिना आंख के क्या आदमी जिंदा नहीं रहते हैं? तो बिना आंख के भी वो प्राणी जो है वो जिंदा रहा। कान में से दिग देवता निकल गया तो बिना कान के बहरे आदमी भी जिंदा रहते हैं। और क्या नाम है, रस एक 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 इंद्रिय के एक एक देवता ये सब शरीर में से निकलते गए और प्राणी जो है वो फिर भी जिंदा रहा है। अवंत में कहा कि हे प्राण अब तुम निकलो। तो जब प्राण निकलने लगे तो सारे देवता घबरा गए, बोले नहीं नहीं इसको तो रहने दो, इसके बिना तो हमारा जीवन नहीं है। तो बोले भाई अब निर्णय करो ब्रह्मा जी कौन सबसे बड़ा है। बोले निर्णय तो हो गया, जिसके न रहने पर कुछ शेष नहीं रहता है, बचता नहीं है, वही सबसे बड़ा है। ये तो प्राणम देवा अनुप्राणंति, इसके संबंध में मैंने आपको बात बताई है। वैसे कठोपनिषद में ऐसा कहा है कि न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, कोई भी जीव जो है केवल प्राण और अपान से जिंदा नहीं रहता है। बोले किससे जिंदा रहता है, कि इस आत्मदेव से ही जिंदा रहता है। अर्थात ये जो पूरा सूक्ष्म शरीर है जिसमें प्राण अपान भी एक हिस्से हैं, पूरा जो सूक्ष्म शरीर है 17 या 19 तत्वों का, इसमें जो आभासित चैतन्य है माने चैतन्य सहित जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये जब तक शरीर में रहेगा तब तक तो ये स्थूल शरीर रहेगा, और जिस किसी हेतु से ये निकल जाएगा, जिस किसी कारण से भी, अब कोई कहता है प्रारब्ध समाप्त हो गया, कोई कहता है कि एक्सीडेंट में मर गया, कोई कहता है रोग से मर गया, प्रारब्ध ही सबका समाप्त होता है, निमित्त उसका कोई भी क्यों न बनो। तो अस्य विश्रंसमानस्य किमत्र परिशिष्यते, कठोपनिषद की श्रुति है ये भी, कि यदि ये भ्रष्ट हो गया माने सूक्ष्म शरीर प्लस चैतन्य, चैतन्य अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो सर्वव्यापक है, उसमें तो कोई चीज व्यक्ति वस्तु कुछ रहो या मत रहो, सारी दुनिया का प्रलय हो जाए तब भी परमात्मा रहता है, और सारी दुनिया बन जाती है तब भी परमात्मा रहता है, तो उससे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मशीन है, जो शरीर जो है, ये मशीन है, इस मशीन में यदि व्यवस्थित इसके अवयव काम करते हैं और इसमें जो शक्ति है काम करने वाली वो व्यवस्थित रहती है, तब तो ये मशीन चलती हुई मालूम पड़ेगी, नहीं तो मशीन बंद हो गई, बोले फेंक के आओ इसको। तो कहते हैं कि केवल प्राण से, केवल अपान से मनुष्य जिंदा नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर सहित जो चैतन्य है उससे ये मनुष्य जिंदा रहता है। अब प्रारब्ध क्षय में क्या हो, ये माने होता क्या है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनको जो जोड़ने वाली चीज है वो प्राण है। स्थूल जैसे मुर्दे का जो शरीर है ना, उसको आप अन्नमय कोश समझ, तो उसमें प्राण नहीं है। तो क्या हुआ, प्राण कहां चले गए, तो बोले वो सूक्ष्म शरीर के साथ निकल गए। इसका अर्थ है कि पहले प्राण के द्वारा ही स्थूल और सूक्ष्म जुड़े हुए थे। अब वो प्राण के द्वारा क्यों जुड़े हुए थे, तो बोले प्रारब्ध के कारण जुड़े हुए थे। जब गर्भ में बालक बनता है तो सूक्ष्म शरीर पहले बनता है, सूक्ष्म शरीर के सहित ही बीज आता है, और वही फिर विकसित होकर के उसमें स्थूल शरीर बन जाता है। तो ये प्राण जो है उस स्थूल और सूक्ष्म को दोनों को जोड़े रखते हैं, जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट लगानी पड़ती है, तो ये सीमेंट है एक तरह से प्राण जो है। अब प्रारब्ध यदि क्षय हो गया माने अब आवश्यकता नहीं रही स्थूल शरीर के भोग की, तो वो प्राण जैसे पहले फैल करके बाहर की तरफ स्थूल में आए थे, अब वो सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ करके फिर सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं, बस यही मृत्यु है, वो सूक्ष्म शरीर फिर उसमें से निकल जाता है। प्राण उसके पेट्रोल है नारायण, और वासना जो है वो उसकी ड्राइवर है, और जीव जो है उसका मालिक है। तो मेरी जैसी वासना होती है, बोले फलानी जगह चलना है, अब ड्राइवर को वहीं ले जाना पड़ेगा, और ड्राइवर भी हो और मालिक भी हो और पेट्रोल ना हो उसमें गाड़ी में, तो गाड़ी चल नहीं सकती है। तो ये जो प्राण है यही पेट्रोल है नारायण। तो सूक्ष्म शरीर को ये प्राण ले जाते हैं, इसीलिए उसको सूक्ष्म शरीर को आतिवाहिक शरीर बोलते हैं। तो कहते हैं कि प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, ये इंद्रियों के जो देवता हैं ये सब प्राण के पीछे पीछे चलते हैं। प्राण है तो इनकी भी स्थिति है, और प्राण नहीं है तो उनकी स्थिति भी नहीं है। ये प्राण माने आप सांस ही केवल मत समझ लेना, सांस तो उसका एक हिस्सा है। ये तो जो फेफड़े बाहर भीतर चलते हैं उसकी वजह से ये सांस मालूम पड़ने लगती है, बाहर की हवा भीतर गई, भीतर की हवा बाहर आई। लेकिन ये फेफड़े जिस कारण से चलते हैं उसको प्राण बोलते हैं। तो शरीर में जो क्रिया शक्ति है, मूल क्रिया शक्ति, वो क्रिया शक्ति स्थूल सूक्ष्म को ज्वाइन किए रहती है। बस वही फैलती है तो शरीर बन जाता है, सिकुड़ती है तो मृत्यु हो जाता है। तो मनुष्या पशुवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयु, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सबकी आयु ये प्राण ही है। जब मर जाता है तो कहते हैं इसके प्राण निकल गए। अरे प्राण अगर हवा का नाम था तो हवा तो अब भी है उसमें, हवा का नाम तो प्राण नहीं है। जिस वजह से वो हवा मालूम पड़ती थी वो अब क्रिया शक्ति काम नहीं कर रही है। इसलिए प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण ही भूत प्राणियों की आयु कहलाता है। तस्मात सर्वायुषम उच्यते, इसलिए इस प्राण को सबकी आयु बोला जाता है। सर्वम एव ते आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते। अब इस प्राण को ही जो ब्रह्म मान करके उपासना करते हैं उसका फल बताते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क्य कांड में ये बात आती है। तो याज्ञवल्क राजा से पूछते हैं, नहीं राजा पूछता है याज्ञवल्क से कि आप हमको उपदेश कीजिए। तो उन्होंने कहा कि और भी तो महात्मा आते हैं, उन्होंने भी तो उपदेश किया होगा। कि हाँ किया था। तो बोले पहले ये बताओ उन्होंने क्या उपदेश किया है, फिर उसके आगे की बात मैं बताऊं। तो बोले उसने, एक महात्मा ने यह उपदेश किया था कि ये प्राण ब्रह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। तो याज्ञवल्क ने कहा कि प्राण ब्रह्म है ये तो ठीक है, लेकिन क्या उसने ये भी बताया था महात्मा ने कि इस प्राण की प्रतिष्ठा क्या है, ये प्राण कहां से पैदा हो जाता है। उपास्य प्राण नहीं है, उपास्य तो प्राण की उत्पत्ति का जो कारण है, प्रतिष्ठा है, वो है। अब ये साधारण आदमी की बुद्धि में असल में ये बातें आती नहीं है। तो स्थूल दृष्टि वाले लोग स्थूल ढंग से काम करते हैं। अब हम कितने देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और हमारे यहां नहीं सभी धर्मों में होती हैं। तो ये क्या है, तो बोले ये सब ईश्वर के प्रतिनिधि मान करके उपासना करते हैं। इंद्र की उपासना करते हैं तो ईश्वर का स्वरूप है ये। माने इंद्र छोटी वस्तु है और ईश्वर जो है वो बड़ी वस्तु है। छोटी वस्तु में बड़ी वस्तु की भावना करके फिर आवृत्ति मूलक जो क्रिया होती है, दोहराना रूप जो क्रिया होती है, उसको उपासना बोलते हैं। तो अब ये जो प्राण है इसमें ब्रह्म की भाव करो और इसकी उपासना करो कि ये प्राण ही ब्रह्म है। तो असल में ऐसे ये उपासना नहीं होती है। ये जितनी भी उपासनाएं उपनिषद में आती हैं वो अहंग्रह उपासना के रूप में ही होती हैं, और ये पुराणों में जितनी उपासना आती हैं वो सब या तो क्रियापरक होती हैं या तो मंत्र परक होती हैं, और यह के रूप में वो उपास्य होता है। तो प्राण को ब्रह्म समझ करके जो उपासना करते हैं उनकी पूरी आयु होती है, तो कैसे उपासना करेंगे इसके? अब देखो एक प्रैक्टिकल बात, यह है कि आप बैठ जाइए, चाहे आसन पर बैठ जाइए चाहे शवासन से लेट जाइए, बस नींद नहीं आनी चाहिए, इतनी बात। और इस शरीर को देखिए, शरीर दिखेगा। अब इस शरीर को देखना बंद कर दीजिए, क्या दिखेगा? बोले सांस चल रही है, बस ये दिखेगा। तो ये जो सांस चल रही है यही प्राण का प्रतीक हो गया, ब्रह्म का प्रतीक प्राण और प्राण का प्रतीक सांस। अब इस सांस को कहो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो ये जो श्वास चल रहा है बस ये ही हूं। तो ये व्यष्टि उपासना प्राण की कहलाती है। अब इसी की समष्टि उपासना क्या है? समष्टि उपासना यह है कि जैसे शरीर देखा हमने, ऐसा ही आंख तो बंद है, लेकिन बंद आंखों से आप स्थूल जगत को देखिए, धरती है, आकाश है, पाताल है, अग्नि है, वायु है, ये सब चल रहा है। अब बोले धरती समाप्त हो गई, माने रूप जो है वो सब समाप्त हो गया, इसको लय चिंतन बोलते हैं। रूप समाप्त हो गया माने तेज समाप्त हो गया, धरती समाप्त हो गई। रूप तो किसी आधार को लेकर ही होगा ना, अगर पंचभूत ना हो तो रूप किस में होंगे? तो शरीर ही ना हो तो रूप किस में होगा? तो शरीर देखो, ये एक शरीर की बात नहीं चल रही, अब ये धरती पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो पंचभूत हैं ये शरीर हैं। इन शरीरों में एक के बाद एक, पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, बस आकाश में मत जाना अभी। बोले सब लीन हो गया, अब क्या हो रहा है? तो बोले साए 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 साए, हवा के चलने की आवाज आ रही है। तो आवाज तो आकाश का गुण है। बोले साए साए को मत सुनो, बस एक आभास है कि वायु चल रही है, और फिर ये वायु मैं हूं, ऐसा निश्चय उसी समय करो कि ये जो वायु चल रही है सबके लय हो जाने पर, यही प्राण मैं हूं, यही प्राण शक्ति है। इस प्रकार से जो प्राणोपासना करते हैं, यही ब्रह्म है, यही मैं हूं, ऐसा जो प्राणोपासना करते हैं तो कहते हैं उनकी अल्प आयु नहीं होती, पूर्ण आयु लिखा है इसमें, तो कि उनकी पूर्ण आयु होती है। तो पूर्ण आयु का कितने? 100 बरस के, 150 बरस कितने? तो वेद में 100 की गिनती आती है, परंतु वहां 100 का मतलब 100 नहीं होता है, वहां 100 का मतलब जितनी जिसकी आयु है वो होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अपने गणित शास्त्र में चलता है, 100 हो, 110 हो, 120 हो, 120, 180, 190, 100, 100 तो सब में ही आ रहा है ना। तो जितनी भी जिसकी आयु है, अर्थात उसकी ये जो अकाल मृत्यु होती है ये नहीं होगी, अगर जो प्राण ब्रह्म को अपना स्वरूप मानता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा इसका फल बताया है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति तस्यैव एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य। पूर्व माने जो अन्नमय पुरुष था, उस अन्नमय पुरुष को माने स्थूल शरीर को मैं मानने वाला जो चैतन्य है वो अन्नमय पुरुष है, और प्राणमय शरीर को जो मैं मानने वाला है वो प्राणमय शरीर है। तो ये जो प्राणमय शरीर है, प्राणमय पुरुष है, ये अन्नमय शरीर का भी शरीरी है, शरीर। ये ब्रह्मसूत्र को क्या बोलते हैं? शारीरक भाष्य। तो शारीरक, शरीरक भाष्य नहीं है, शारीरिक भाष्य नहीं है, शारीरक। इस शरीर का जो शारीर है, माने शरीर वाला जो है, अर्थात यही चेतन आत्मा, इसको बताने वाला जो भाष्य है वो शारीरक भाष्य है। तो ये जो प्राणमय पुरुष है, ये अन्नमय पुरुष का शारीर है, अर्थात उसका भी अंतरात्मा है, ये अभिप्राय। अच्छा, भगवान को आप अंतर्यामी बोलते हो? नहीं, सभी बोलते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे बेपढ़ा लिखा हो, लेकिन कभी विचार नहीं करते हैं कि अंतर्यामी का मतलब क्या है। तो अंतर माने भीतर, भीतर रह करके जो सबका शासन करे उसको अंतर्यामी बोलते हैं। तो भीतर माने क्या? हड्डी के भीतर, कि खून के भीतर? बोले कि भीतर के भीतर। और फिर बोले भीतर के भीतर के भीतर, अर्थात अंतर की जो सीमा है, भीतरीपन की जो सीमा है, जिसके आगे फिर भीतर नहीं होता है, उसको अंतर्यामी बोलते हैं। वो आत्मा जो सब आत्माओं के भीतर के भीतर के भीतर के भीतर के भीतर 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 भीतर, उसके आगे फिर कुछ नहीं है, उसी को अंतर्यामी बोलते हैं, उसी को प्रत्यक आत्मा बोलते हैं। और जो बाहर से बाहर से बाहर से बाहर से बाहर हो, भीतर 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 चले जाओ तो प्रत्येक आत्मा, और बाहर 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 आओ तो उसी को ब्रह्म बोलते हैं नारायण। और उपनिषद क्या कहती हैं? कि जो भीतर है सोई बाहर है, माने जो प्रत्येक आत्मा है वही ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तुम ही हो।